ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान का सागर शिव बाबा इस समय हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। इस नेत्र की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह नेत्र सबका बंद हो गया है, इसलिए अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं। तो जब बाप आते हैं तब इस अज्ञान अंधकार से निकाल ज्ञान का प्रकाश देते हैं। तो आत्मा की भेंट बाबा किससे करते हैं? दिए के साथ। तो दिया बुझ जाता है तो क्या होता है? अंधकार हो जाता है। कोई मरता है तो दिया जलाते हैं ना उसकी डेड बॉडी के सामने, ताकि उसकी आत्मा को रास्ता मिले, अंधकार में भटके नहीं। लेकिन अगर बेहद रूप में देखें तो सबकी आत्मा बुझी हुई है, इसलिए अंधकार अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। तो बाबा आकर के ज्ञान का नेत्र खोलते हैं और घृत डालते हैं, ज्ञान का घृत डालते हैं। लेकिन वो दिया सलाई कौन सी है? क्योंकि दिया जगाना पड़ता है ना, बुझ गया है तो जगाना पड़ता है। तो बाबा कैसे ये दिया जगाते हैं? स्मृति दिलाकर। तो स्मृति जो बाबा दिलाते हैं ये जैसे दिया सलाई है, इसको सिंधी में तिली कहते हैं, माचिस की तीली। तो माचिस की तीली से दिया जलाते हैं ना, तो कौन सी तीली है? स्मृति की तीली। बच्चे तुम कौन हो? बच्चे तुम कहाँ से आए हो? बच्चे तुम क्या क्या करने आए हो? तो उसकी स्मृति दिला करके आत्मा की ज्योति जगाते हैं। तो अभी हम क्या कहेंगे कि बाबा ने वो स्मृति दिलाई है और हमारी आत्मा की ज्योति जग गई है, अभी भटकना बंद। अभी भटकना नहीं है क्योंकि प्रकाश मिल गया है, रोशनी आ गई है। तो जब रोशनी आ गई है तो सब कुछ नया नया लगता है ना। दिखाते हैं कि एक माता थी, उसको बचपन से अंधी थी, नेत्र मना दिखाई नहीं देता था। अब बड़ी हो गई तो भी नेत्र तो था नहीं, लेकिन ऑपरेशन कराया और फिर उसको आंख आ गई, हाँ जैसे दिखाई देने लगा। अब इतनी बड़ी उम्र की थी और पहली बार वो देख रही है सब, तो बैंगन देखती है कहती अरे ये क्या है, ये क्या है। आलू देखती है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हाँ क्या है क्या है पूछ रही है, क्योंकि उसने पहले तो कभी देखा नहीं। तो देखो बाबा भी कहते हैं तुम भी कैसे अज्ञान अंधियारे में थे, जो कुछ करते थे पता ही नहीं था क्यों कर रहे हैं, क्या लक्ष्य है, कहाँ जाना है, तो अंधियारे में भटक रहे थे। अब तीसरा नेत्र मिल गया, आंखें मिल गई तो भटकना बंद, ज्ञान का प्रकाश मिल गया, स्मृति आ गई तो जीवन ही बदल गया है ना। अभी क्या कहेंगे? जीवन बदल गया, पहले क्या थे अब क्या बन गए हैं। दूसरा आज बाबा कहे कि मैं करण करावन हार कैसे हूँ, करता क्या हूँ और कराता क्या हूँ। तो बाबा क्या करते हैं क्या कराते हैं वो आज बाबा ने बताया। मनुष्य समझते हैं कि सब कुछ भगवान ही करता कराता है, लेकिन भगवान सब कुछ तो नहीं करता कराता है। तो क्या करता है क्या कराता है वो बाबा ने आज स्पष्ट किया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 4/7/2026 है। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे क्या होता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र बाप जब देते हैं तो जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है, बुझी हुई ज्योति जग जाती है जब तीसरा नेत्र ज्ञान का बाबा देते हैं। प्रश्न है, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है, वो क्या करते हैं और क्या कराते हैं? एक है क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, दूसरा है क्या करते हैं और क्या कराते हैं। तो जब क्या करते हैं क्या कराते ये समझ लिया तो क्या नहीं करते नहीं कराते वो भी समझ में आ जाता है। तो बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है, वो क्या करते हैं और क्या कराते हैं? उत्तर है, बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। कितना बड़ा कार्य है, भगवान महावाक्य सुनाते हैं, ज्ञान के महावाक्य सुनाते हैं। तो मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ, मुरली सुनाता हूँ और क्या क्या करता हूँ, मंत्र देता हूँ। कौन सा मंत्र? मनमना भव का मंत्र। तीसरा क्या करता हूँ, तुम्हें लायक बनाता हूँ, न लायक बन गए थे तो लायक बनाता हूँ। और चौथा क्या करता हूँ, फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ, ये कराता हूँ, बाकी ये करता हूँ, मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ, मंत्र देता हूँ, लायक बनाता हूँ, फिर कराता क्या हूँ, तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। बाबा ने उद्घाटन करते हैं, हमारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराते हैं। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो, मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। ज्ञान जो सुनाते हैं, श्रीमत जो बाबा देते हैं, ये बाबा का डायरेक्शन है, बच्चे ये करो ये नहीं करो, ये करो ये नहीं करो, हर मुरली में आता है। तो ये श्रीमत कहो बाबा का डायरेक्शन है। बाबा कहते हैं मैं डायरेक्शन देता हूँ, ये करो ये नहीं करो। अब ये यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है, और कोई कृपा आशीर्वाद नहीं है। भगवान कृपा करो आशीर्वाद करो, बाबा कहते हैं मेरी कृपा आशीर्वाद क्या है, जो मैं श्रीमत देता हूँ वो करो, तो वही मेरी कृपा आशीर्वाद है। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कौन आया सवेरे सवेरे, बाबा की मुरली सुनाने, स्वयं बाप। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है, जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। कौन आया हमें जगाने, जो ज्ञान का तीसरा नेत्र ही खुल गया। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी है ना, बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वो बाप है वो ये कोई नहीं जानते। ज्योति जगाने वाला है पर वो पिता है हमारा, ये कोई नहीं जानते। ब्रह्म समाजी कहते हैं वो क्षमा है, परमात्मा को क्षमा मानते हैं, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वो ज्योति ही जगाते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर देखेंगे ना, बस एक दिया ही जल रहा है, 24 घंटा वो दिया जलता रहता है, वो बंद उसमें अंदर ही जो होता है उसमें होता है, और वो पूरा समय रात पर भी ध्यान देते हैं कि वो ज्योति बुझे नहीं। तो कहते भी, तो बाबा कहते हैं ब्रह्म समाजी कहते हैं वो क्षमा है, ज्योति है, मंदिर में हमेशा वो ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब ये बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जलाते हैं, वो तो दिया होगा तो कैसे जलाएंगे, माचिस की थी कि दिया सलाई से दिया जलाते हैं। तो बाप कोई माचिस से दिया नहीं जलाते हैं, ये तो बात ही न्यारी है। तो आत्मा की ज्योति कैसे जलाते हैं, कोई माचिस की दिया सलाई से नहीं, लेकिन स्मृति की दिया सलाई है जिससे आत्मा को रोशनी आ जाती है। ये तो बात ही न्यारी है, गाया भी जाता है, ईश्वर की गत मत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं, सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा, वो आत्मा है परमात्मा है तो उनको ज्ञान सिखलाना है, शरीर तो नहीं सिखलाएगा, शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्य के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात पांच विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में ये पांच विकार होते नहीं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे, किसी में भी बुरे संस्कार नहीं थे, ये विकार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे, कितने अच्छे संस्कार थे, सोचो तो सही, देवताओं के कितने अच्छे संस्कार थे, देवी देवताओं के संस्कार कितने अच्छे होते हैं, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते हैं, बाकी गुरु गुसाई आदि ये तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, आराकल्प से चलते आए हैं, जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है, परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए, क्यों बुलाते हैं परम पिता परमात्मा को, कि आकर के पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो व दरवाजा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं, खुद तो सतयुग में आते नहीं है तो खुद तो नहीं खोलेंगे, खुद तो परम धाम का गेट खोलते हैं, पर सतयुग का गेट बच्चों के द्वारा खुलवाते हैं। बाप आकर गेट खुलवाते हैं किसके द्वारा, शिव शक्ति माताओं द्वारा, वंदे मातरम शिव शक्ति माताओं द्वारा, इसलिए वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती है, कलयुगी माताओं की वंदना नहीं है। कौन सी माताओं की वंदना है, संगम युगी माताओं की वंदना है। तो इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती है, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता है ही नहीं, कलयुगी दुनिया में कोई भी श्रेष्ठाचारी माता है ही नहीं। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है, किनको कहेंगे, बाबा कहते हैं जो योग बल से पैदा हो, पूरे श्रेष्ठाचारी तो वही होंगे ना देवताएं, जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। अब इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं है, वो अपने ही प्लान बना रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कितने प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इससे सिद्ध है राम राज्य चाहते थे, इससे क्या सिद्ध है कि अभी रावण राज्य है, भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो कौन चाहिए, कोई बापूजी नहीं राम राज्य स्थापन कर सकते, कौन चाहिए राम राज्य स्थापन करने के लिए, बेहद का बापूजी चाहिए। बेहद का बापूजी चाहिए राम राज्य स्थापन करने लिए, जो राम राज्य की स्थापना भी करे, केवल स्थापना करने वाला नहीं चाहिए, राम राज्य की स्थापना करने वाला भी हो और रावण राज्य का विनाश भी करे, क्योंकि राम राज्य तब आएगा जब रावण राज्य का विनाश हो ना, तो दोनों कार्य करे, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। तो बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है, कितनी बड़ी बात, सारी दुनिया को आग लगनी है, रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोई हुई है। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, है ना, हम सब सोए हुए थे अज्ञान अंधेरे में, बाप ने आकर के जगाया है। भक्ति की रात अब पूरी हुई, हम जग गए हैं तो हमारे लिए भक्ति की रात पूरी हुई। दिन शुरू होता है, रात पूरी हो अब दिन हो रहा है। तो बाप संगम पर आया हुआ है, बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र और दिव्य दृष्टि देते हैं, इससे क्या हो जाता है, जिससे तुम सारे विश्व को जान जाते हो, तीनों कालों को, तीनों लोकों को जान जाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये, अब जान गए हैं तो क्या बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। सबकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है ना, अविनाशी, बेहद का ये अविनाशी ड्रामा है। और ये जब समझ लेते हैं तो फिर क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, ये प्रश्न सब खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जग गए हो, सब जग गए हैं ना, अभी कोई सोया हुआ तो नहीं ना, वैसे भी सोया हुआ कोई नहीं होगा, सब जग गए हैं, क्लास में बैठे हैं। अभी तुम कितना जग गए हो, सारी दुनिया तो सोई हुई है, अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। सोचो, सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। ये किसको पता ही नहीं है कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, पतित पावन सीताराम गाना माना, पतित पावन को पुकार रहे हैं कि आओ आकर पतितों को पावन बनाओ, लेकिन ये नहीं कहते हैं पतितों को पावन बनाओ, ये कहते हैं, लेकिन क्या नहीं कहते हैं, बाबा कहते हैं ये नहीं कहते हैं कि आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाओ। वो तो पता ही नहीं है कि वो आकर के समझाएंगे, बस पतितों को पावन बनाओ, बस यही कहते हैं। परंतु ये नहीं कहते हैं कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाओ। तो बाप कहते हैं तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से फिर पावन बनते हो, याद से पावन बनते हो और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये भी जानते हो कि विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है, बाकी कौरवों और पांडवों की लड़ाई नहीं हुई है। पांडव तो भगवान से प्रीत बुद्धि थे, वो तो अहिंसक थे, वो थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं बाकी पांडवों और कौरवों की लड़ाई नहीं हुई है, पांडव कौन थे ये भी किसको पता नहीं है। अब गुप्त वेश में ये पांडव बैठे हैं ना, ये किसको पता नहीं कि हम ही वो पांडव है, इसलिए बाबा ने देखो नाम ही रखा है पांडव भवन। तो सच्चे सच्चे पांडव तो यहीं बैठे हैं ना। तो पांडव कौन थे ये भी किसको पता नहीं है, सेना आदि की तो कोई बात ही नहीं है। सेना कहना माना फिर उसमें हथियार चाहिए, ये चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बाकी यहाँ तो कोई हथियार पवार है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सेना आदि की तो कोई बात ही नहीं है, तुम्हारे तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता। पांडवों की तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता, उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश से पहले, विनाश तो होगा परंतु उससे पहले क्या करना है, विनाश से पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। अगर सतो प्रधान योग बल से नहीं बनेंगे फिर तो सजाएं खानी पड़ेगी, बनना तो पड़ेगा क्योंकि घर जाने लिए तो सतो प्रधान तो बनना ही है। तो विनाश से पहले सतो प्रधान जरूर बनना है और ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तो गाया भी जाता है भगवानुवाच, ग्रस्त व्यवहार में रहते ये एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट, अब जो अपवित्र बने, विकारी बने, भटके या जो कुछ भी किया, बाबा कहते अभी भूल जाओ, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट। ये तो ड्रामा में नूद है, जो किया वो ड्रामा में सब नूद था, अभी उसको याद मत करो, वो भूल जाओ, ये तो ड्रामा में नूद है। सृष्टि को अब सतो प्रधान बनना ही है, तमो प्रधान बन गए चलो ड्रामा, पास्ट इज पास्ट, अभी सतो प्रधान सारी सृष्टि को बनना ही है, ये ड्रामा की भावी है, ड्रामा की भावी है। लोग कहते हैं ईश्वर की भावी, बाबा कहते हैं ईश्वर की भावी की बात नहीं है, ये ड्रामा की भावी है कि सतो प्रधान सृष्टि को बनना ही है। ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है जो बाप बैठ समझाते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं, गिरते गए गिरते गए गिरते गए, तमो प्रधान बनते गए, तब फिर बाबा कहते हैं बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब ही मैं आता हूँ। ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, सूर्य प्रगट होता है अंधेरा विनाश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब ही मैं आता हूँ। फिर शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलिडे भी बंद कर दिया है, नहीं तो कम से कम कितने दिन छुट्टी होनी चाहिए शिवरात्रि की, बाबा कहते कम से कम एक महीना हॉलिडे चलना चाहिए शिवरात्रि का। हाँ क्रिसमस की भी छुट्टियां देते हैं ना, 8 दिन तो कम से कम छुट्टियां देते हैं, और जो जन्माष्टमी की तो नहीं लेकिन दिवाली की तो देते ही हैं, तो सब देते हैं लेकिन शिवरात्रि की कोई छुट्टी नहीं। बाबा कहते हैं एक महीना हॉलिडे होनी चाहिए। कोई को भी पता नहीं शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है, वो सृष्टि पर आता है उनका जन्मदिन, तो कितनी खुशियां मनानी चाहिए, कितनी उनके लिए पहले छुट्टी लेनी चाहिए मनानी चाहिए। शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से एक मास सब धर्म वालों को मनाना चाहिए, खाली भारत को नहीं। अभी तो दिवाली तो कम से कम मनाते हैं, अमेरिका में भी मनाते हैं, सब देशों में भारतवासी जहाँ होते हैं वहाँ तो दिवाली तो मनाते ही हैं, परंतु शिव जयंती तो कहाँ मनाते। तो धूमधाम से एक मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए, खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर के सदगति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उस समय और कोई धर्म ही नहीं था, दूसरे कोई धर्म नहीं थे जब देवी देवताओं का धर्म था। देवताएं ही विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थी। हाँ, देश अलग थे ही नहीं, कोई जो पार्टीशन हो, ये देश और वो देश, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है कोई पार्टीशन नहीं थी, सारी दुनिया पर तुम्हारा राज्य था। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य। क्या कहते हैं उस राज्य को, अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य। और अभी वो बाबा कहते हैं फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं, जो था वो फिर से प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है, क्या गायन है राम राज्य के लिए, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। वहाँ अधर्म की तो कोई बात ही नहीं थी, धर्म का ही उपकार था, जैसा राजा राम वैसे उसकी प्रजा, तो राजा और प्रजा समान। तो राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है, तो वह अधर्म की तो कोई बात ही नहीं थी। बाबा ने तुम्हें, अब नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। वो दिखाते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर बाबा ने कहा था फिर आप दिखाओ कि ब्रह्मा की नाभि से फिर विष्णु निकला। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, तो ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है, बनाया होगा किसी ने कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। तो बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर के ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं जो भी चित्र देखो, कोई भी चित्र, भक्ति मार्ग के कितने चित्र है, जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है, उनका रहस्य है, उनमें ज्ञान है जरूर, लेकिन कोई उस रूप से वो चित्र है नहीं, इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। अब शिव का बड़ा बड़ा चित्र बनाते हैं, वो भी अयथार्थ है, कितना बड़ा बड़ा शिवलिंग बनाते, एकदम छत जितना बनाते रहते हैं, तो शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, वो भी अयथार्थ है। भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है, छोटी बिंदी वो तो वही ढक जाएगी सब, तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते कौन थे वो, कब आए थे, कैसे पैदा हुए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा फिर कह देते, तीन मुख दिखाते, पीछे चौथा मुख भी दिखाते, पंचमुखी ब्रह्मा भी दिखाते, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना शंकर द्वारा विनाश ये भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना शंकर द्वारा विनाश, परंतु बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो स्थापना करते ही नहीं है, बड़ी बात, ब्रह्मा स्थापना नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा स्थापना नहीं करते हैं, स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे, अकेला ब्रह्मा करेगा स्वर्ग की स्थापना, नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परम पिता परमात्मा ही करते हैं। हाँ ब्रह्मा द्वारा, लेकिन ब्रह्मा तो स्वर्ग की स्थापना नहीं करते ना, अकेला वो स्थापना कैसे करेगा, और शिव बाबा उनके द्वारा, फिर उनके द्वारा भी कैसे, उनकी जो मुख संतान है उनके द्वारा, तो कितनी कितनी बड़ी बात हो जाती है। नहीं तो बस ब्रह्मा द्वारा स्थापना कह दिया, समझ लिया कि ऐसे ही स्थापना करते हैं। ब्रह्मा को संकल्प आया कि मैं एक अनेक हो जाऊं, तो बस अनेक हो गया और स्थापना हो गई। बाबा कहते ऐसे थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग की स्थापना तो परम पिता परमात्मा ही करते हैं, ये आत्मा तो पतित है। जिनको ब्रह्मा नाम दिया शिव बाबा ने, वो आत्मा तो उस समय तो कहेंगे ना पतित है, अभी तो कहेंगे फरिश्ता है, तो ये आत्मा तो पतित है। इनको तो व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है, अव्यक्त नहीं है अभी तो ये, अभी हाँ उस समय यही कहेंगे ये मुरली साकार है, तो ये इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा फिर पावन बन जाएगी और चली जाएगी। आत्मा पावन बन गई तो फिर पतित शरीर में तो रह नहीं सकती है, फिर चली जाएगी, फिर सतयुग में जाकर के नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए ना, चित्र फिर वहां दे दिया है ब्रह्मा को, कहाँ दिखा दिया है, पर वो दिखाते ना जैसे बादलों के बीच में ब्रह्मा विष्णु शंकर, चित्र फिर वहां दे दिया है। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए, सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा फरिश्ता है, पर प्रजापिता प्रजा यहाँ है तो फिर प्रजा का पिता भी यहाँ है। तो बाबा कहते हैं चित्र फिर वहां दे दिए, और जैसे ये ज्ञान के अलंकार भी वास्तव में तुम्हारे हैं, परंतु विष्णु को दे दिए हैं। नौधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है, मीरा का भी नाम गाया हुआ है, तो पुरुषों में किसका नाम गाया हुआ है, नारद का, तो पुरुषों में नंबर वन भक्त है नारद, और माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये ज्ञान सुन रहे हो, क्या कर रहे हैं हम, लक्ष्मी या नारायण को वरने के लिए ये ज्ञान सुन रहे हैं। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है सतयुग में, नारद के लिए भी दिखाते हैं, सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, सोचा मेरा चेहरा बहुत सुंदर हो गया है तो लक्ष्मी तो मुझे ही वरमाला पहनाएगी, हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अब लक्ष्मी को वरने लायक तो तुम बन रहे हो, भक्त थोड़ी कोई लक्ष्मी को वरने लायक है, वो नंबर वन भक्त जरूर है नारद, लेकिन लक्ष्मी को वरने लायक नहीं है। तो लक्ष्मी को वरने लायक तो तुम बन रहे हो, बाकी वो तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं, बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। अब रियल बात क्या है, रियल बात क्या समझाते हैं कि लक्ष्मी तो सतयुग में थी, और नारायण और नारद तो द्वापुर का भक्त था, द्वापुर में ही आया होगा ना, नारायण 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 कर रहा था, तो वो कोई सतयुग में थोड़ी आया होगा, वो तो द्वापुर का भक्त था, और लक्ष्मी तो सतयुग में थी, तो अभी क्या नारद वो भक्त सतयुग में गया होगा क्या कि लक्ष्मी हमको वरमाला पहनाए। तो लक्ष्मी तो सतयुग में और नारद भगत द्वापुर में, सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया, सोचने की बात है ना, सतयुग में नारद कहाँ से आया, वहां भगत तो कोई है ही नहीं, तो सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया। राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है, ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। कितना अज्ञान अंधियारा है, बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं, अभी हम सब क्या बन गए हैं, हाँ विश्व कल्याणकारी। हमारी बड़ी दादी जी यही कहती थी, जब विदेशों में कोई सेवा केंद्र नहीं थे तो मधुबन में तो कोई विदेशी नहीं आते थे, और जब विदेशी आना शुरू हो गए तब दादी कहती थी अब लगता है हाँ विश्व कल्याणकारी है शिव बाबा, क्योंकि विश्व से भाई बहने मधुबन में आते हैं। तो बाबा कहते तुमको अभी कल्याणकारी बनाते हैं, अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाएं। तुम बाप तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए, भक्ति मार्ग में चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। दिखाया है, देखा होगा वो चित्र कि गांधी जी लेटा हुआ है और गांधी जी की नाभि से नेहरू निकला। फिर कहाँ दिखाया, नेहरू जी की नाभि से फिर वो इंदिरा गांधी निकली, ऐसे से कुछ कुछ दिखाया है। तो बाप समझाते हैं, तो बाप समझाते चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं, गांधी की नाभि से नेहरू निकला। अब कहाँ वो विष्णु देवता जिसकी नाभि से ब्रह्मा निकला, कहाँ वो विष्णु देवता और कहाँ ये मनुष्य, जो गांधी तो फिर भी मनुष्य ही था, उसकी नाभि से नेहरू निकला, कहाँ वो मनुष्य। तो इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो, नंबर वार तुमको खुशी रहती है, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। ये तो कभी सुना ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था कि बेहद का बाप भी कभी पढ़ाएंगे, क्योंकि गीता में तो श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, तो समझा कि कृष्ण भगवान ही पढ़ाता है, पर बेहद का बाप पढ़ाता है ये तो कुछ किसी को पता ही नहीं था। भगवानो वाच लिख दिया है, श्री कृष्ण भगवानो वाच, भगवान कब आया, कब आकर के गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं। इस कहेंगे 5000 साल पहले सुनाई, बाकी तो और क्या तिथि तारीख है ही नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई को भी बुद्धि में आता ही नहीं है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। कितना झाड़ बड़ा हो गया है, ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते कितने हो जाएंगे ब्राह्मण, कितने हो जाएंगे, 33 करोड़ हो जाएंगे ब्राह्मण। बाबा तो कहते अनगिनत हो जाएंगे, कहाँ गिनती कर पाएंगे। पहले हम लोग करते थे, मधुबन से एक फॉर्म जाता था, सब सेंटरों पर जाता था कि आपके सेंटर पर कितने पक्के ब्राह्मण आते हैं, कितने कच्चे ब्राह्मण हैं, कितनों की सेवा की, बहुत लिखते थे और वो फॉर्म भर के मधुबन भेजते थे, तो हम बनाते थे। लेकिन फिर तो देखा बढ़ते गए कहाँ तक बैठ के बनाएंगे, तो अभी तो बाबा कहते अनगिनत हो जाएंगे, तो कहाँ तक बैठ करके फॉर्म भरवाएंगे और गिनती कराएंगे और फिर वो लिखेंगे, फिर यहाँ टोटल करेंगे, अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्र लगाते हैं, हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचा है, हम है भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर, सच्चे रूहानी सोशल वर्कर बाबा कहते तुम हो। परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं, हम रूहानी सेवा करते हैं और वो जो जिस्मानी सोशल वर्कर है वो जिस्मानी सेवा करते हैं, वो जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं, लोग कहते हैं, आते हैं ना, पूछते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं हमसे, कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो, क्या सेवा करते हो तुम भारत की, बोलो। अब क्या बोलो उनको, हम है रूहानी सेवाधारी। अभी नहीं कहते, पहले बहुत कहते थे तुम क्या सेवा करते हो, अभी नहीं कहते, अभी तो इतने अभियान निकालते हैं ना, सब प्रकार के अभियान, और सबसे बड़ा अभियान तो नशा मुक्त, वो जो अभियान निकला उससे तो गवर्नमेंट बहुत प्रभावित हो गई। तो इसीलिए बोलो हम है रूहानी सेवाधारी, स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं, शिव बाबा है करण करावनहार जो करा रहा है। वो कहते भी हैं, शिव बाबा करण करावनहार है, वो क्या कहते हैं, मुरली कौन चलाता है, मैं चलाता हूँ, हाँ मुरली शिव बाबा चलाते हैं, ये करनहार हो गया, मुरली चलाना ये शिव बाबा का काम है। मुरली कौन चलाता है, तो ये भी तो कर्म हुआ ना, शिव बाबा करण करावन आ रहा, तो ये भी तो करते हैं ना कर्म मुरली चलाने का। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे मुरली चलाओ, हाँ बाबा बच्चों को भी तैयार करते हैं ना, ऐसे ऐसे ज्ञान सुनाओ मुरली चलाओ। महामंत्र देते हैं मन मना भव, ये भी कर्म करते हैं, मंत्र देते हैं मन मना भव, कर्म सिखलाया ना। जैसे बाबा कहते हैं मन मना भव, तुम सबको ये मंत्र दो कि परमात्मा में मन को रखो, फिर तुमको तीसरा क्या कहते हैं, तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ। इसीलिए करण करावन हार कहा जाता है, करते भी हैं और फिर बच्चों को कहते तुम भी कराओ, तो करण करावन हार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, ये शिक्षा देते हो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है, सबको देना है पैगाम कि बाप को याद करो वर्षे को याद करो। ऐसे नहीं क्या, नहीं दूसरों को पैगाम दो, भगवान को याद करो वर्षे को याद करो, पर क्या नहीं करो, ऐसे नहीं कि दूसरे को पैगाम दो और खुद याद में न रहे, फिर क्या होगा। अब दूसरे को तो पैगाम दिया कि शिव बाबा को याद करो, खुद याद में रहते नहीं है, तो फिर क्या होगा। दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे, क्योंकि खुद तो करते नहीं है, केवल दूसरों को सुनाते हैं, तो बाबा कहते हैं खुद पीछे रह जाएंगे और जिनको मैसेज दिया वो आगे चले जाएंगे। तो मैसेज देने वाले रह जाएंगे और जिनको दिया मैसेज वो पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे। तो याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं, दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं, और खुद जो दूसरों को कहते हैं वो खुद नहीं करते, तो बाबा कहते हैं वो तो फिर बनते नहीं है। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, क्या बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं कि वो याद में जास्ती रहती है, बिगर देखे बाबा को देखा भी नहीं, मधुबन में कभी आई भी नहीं है, तो भी बिगर देखे भी पत्र लिखती है, बाबा हम आपके हो चुके हैं, देखा नहीं मधुबन आई नहीं, लेकिन पत्र लिखते बाबा को, बाबा हम आपके हो चुके हैं और हम पवित्र जरूर रहेंगे। तो तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है, विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर में है मेरु। ये मेरु कौन है, ब्रह्मा सरस्वती, और फूल कौन है, शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरु, माला उठाते ही पहले फूल और दो दाने हाथ में आते हैं। जैसे माला उठाएंगे तो पहले तो फूल और जो मेरु है उस फूल के नीचे उसको आई वही हाथ में आता है। तो माला उठाते ही पहले फूल और दो दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। माला उठाई पहले फूल और मेरु, उसको वो तो साथ में होते हैं, तो उसको उठाया और पहले आंखों पर रखते हैं, चूमते हैं, फिर माला फेरते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, फिर है माला, फिर इतने 108 दाने। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो ये माला तुम्हारा ही यादगार है, हमारा ही यादगार, जो सिमरनी गाई जाती है, बाबा कहते ये तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने ये गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी, बाप है मोस्ट बिलवड फादर। ये यज्ञ बाबा ने रचा है, सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। लेकिन क्यों नहीं अभी तक स्वाहा हो रही है, क्योंकि इस यज्ञ के ब्राह्मण पूरे तैयार नहीं हुए, तो तैयार हो जाए पूरे ब्राह्मण तो फिर यज्ञ में ये आहुति पड़े न सारी दुनिया की, तो इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाप है मोस्ट बिलवेड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वो जरूर आएंगे, निश्चित है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वो जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। तो बाप कहते हैं बच्चे सुख धाम में चलना है तो पवित्र बनना है, मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है, कृपा आशीर्वाद बाबा कहते मांगना नहीं है। चलो वस्तु तो नहीं मांगते हैं, गुण भी नहीं मांगना है, शांति दो शक्ति दो नहीं, कृपा करो आशीर्वाद करो बाबा कहते कुछ भी मांगना नहीं है, कुछ भी मांगना नहीं है, कृपा करो मदद करो नहीं। हम तो सबको मदद करते हैं, बाबा सबको मदद करते हैं, लेकिन शर्त क्या रखते हैं? मदद करने लिए मैं तैयार हूँ परंतु शर्त क्या है? हिम्मत तुम रखो। ऐसे नहीं बाबा हिम्मत भी तुम ही दो मदद भी तुम ही करो, नहीं, हिम्मत तो बच्चों को करनी है ना, हिम्मत भी बाबा करे तो फिर हम क्या करेंगे? कर्म का फल हमको पाना है और हिम्मत भी बाबा देवे, हिम्मत का तो कर्म हमको करना होगा ना। तो बाबा कहते हैं नहीं, हम तो सबको मदद करते हैं पर पुरुषार्थ तो तुमको करना है ना, आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, पाप दगत करना बाप का काम है पर याद करना तो तुम्हारा काम है ना। पूरा वाक्य बोलना चाहिए हा? बाबा मदद करो नहीं, याद पहले करो, पुरुषार्थ पहले करो, वो भूल जाते हैं, बस बाबा मदद करो बाबा मदद करो, तो आधा वाक्य ही याद करते हैं। हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा, हिम्मत ए मर्दा ये भूल जाते हैं, मदद करो बाबा मदद करो। तो बाबा कहते हैं याद करना तो तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। कौन सी कृपा बाबा करते हैं? डायरेक्शन देते हैं। हाँ बच्चे बाबा बुद्धि को टच करते पर हिम्मत तो बच्चे रखते हैं ना, यही कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है, खाओ पियो घूमो फिरो भले लेकिन पवित्र भोजन खाना है। ऐसे नहीं खाओ पियो जहाँ भी जाओ होटल में जाओ और जो मिले जो खाओ वो नहीं, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं वहाँ प्याज आदि थोड़ी होगा, देवताएं प्याज खाएंगे क्या? प्याज लहसुन देवताएं नहीं खाते, ये सब यहाँ छोड़ना है, ये चीजें वहाँ होती नहीं, बीज ही नहीं है, प्याज लहसुन का सतयुग में बीज ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये बीज आ गया है, वहाँ बीज ही नहीं है। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, अभी देखो कितनी बीमारियां निकली है, वहाँ तमोगुणी कोई चीज होती नहीं, हर चीज सतो प्रधान। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, हाँ बाबा कहते हैं बात मत पूछो क्या क्या खाते हैं, पता है क्या क्या खाते हैं? सांप भी खाते हैं, ऐसे खाते हैं। अब मुझे याद है मैं वियतनाम गई थी, वियतनाम, तो वहां पर हमने देखा दुकानों पर ऐसे सांप लटक रहे, भरे हुए सांप। मैंने कहा ये क्यों लटक रहे, क्या लोग खाते हैं, क्या क्या खाते हैं? तो सांप भी खाते हैं। वहां पर हमने देखा जानवर ही नहीं, छोटे पक्षी कुछ नहीं है, कहते सब खा जाते हैं, किसी को भी छोड़ते नहीं है, सब खा जाते हैं। तो देखो यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। सबसे बड़े पते की बात बाबा कहते हैं मुझे याद करो सब संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। सारी मुरली का सार आ गया। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती। पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूल कर ग्रस्त व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरा, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। वरदान, स्थूल कार्य करते भी, स्थूल कार्य छोड़ना नहीं है, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा ये स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूं। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चेतन को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। कितना बड़ा कार्य विश्व कल्याण का मिला है, हाँ, तो एक एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, हाँ, यही लक्ष्य रहेगा। स्लोगन, अभी योद्धा बनने की बजाय क्या बनो, निरंतर योगी बनो। माया से लड़ते नहीं रहो अंदर, अभी योद्धा बनने की बजाय निरंतर योगी बनो। अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके लिए जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है, दुखी आत्माओं के मन में क्या आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो। बहुत दुखी हो जाते ना तो बस अभी मरना है मरना, ऐसे सोचते ना, तो अभी विनाश हो, ये दुखी आत्माओं के मन में आवाज उठा है, अब विनाश हो। वैसे ही आप विश्व कल्याणी आत्माओं के मन में क्या उठा है, वो तो समझ से विनाश हो क्योंकि दुखी है, और आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो, क्या संकल्प उत्पन्न हो, कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो तब ही समाप्ति होगी। सबका कल्याण हो वो समझते विनाश हो, और हम समझते सबका कल्याण हो तब समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। वो विनाश तब करेंगे, कब करेंगे, जब विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। जब हम पूरे तैयार हो जाएंगे तो उनको हमारा इशारा चाहिए, तब वो विनाश करेंगे ना, इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो, विनाश ज्वाला को तेज करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, बोलो।
ओम शांति। एक समाचार आप सभी को सुना रहे हैं। शांतिवन में लगभग पिछले 40 वर्षों से ज्ञानामृत प्रेस में आत्म प्रकाश भाई जी के साथ में एक बहुत पुराने भाई जी रहते थे, कई पुराने भाई बहने जानते होंगे, दिलीप सिंह भाई थे। आप अमृतसर से 1953 में ज्ञान में निकले थे, बहुत पुराने कुमार थे। हमारे अमीरचंद भाई, जगदीश भाई, निर्वीर भाई, इन सभी के समय ज्ञान में आए हुए कुमार थे। गुप्त रहते थे, बहुत सरल स्वभाव के थे और बहुत ही गुप्त पुरुषार्थी भी थे और रहते भी गुप्त थे। तो ऐसे बहुत पुराने भाई जिन्होंने आज कल 3 तारीख को दोपहर को अपना भौतिक शरीर त्याग करके बाबा की गोद ली। शुरू में तो आप पंजाब में ही रहे, वो अनेक वर्षों तक वहां पर बहुत सारे सेंटर्स खोले, अनेक जगह अनेक आत्माओं का भाग्य जगाया। फिर उसके बाद में लगभग पिछले 40 वर्षों से आप यहाँ शांतिवन में रह रहे थे और आज दोपहर को 2:30 बजे उनके भौतिक शरीर को यहाँ 4 धाम यात्रा के लिए लाया जाएगा और उसके बाद शांतिवन के मुक्ति धाम में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जो भट्टी वाले भाई बहने हैं, आप तो अपनी दिनचर्या में ही रहना, और जो मधुबन के या कोई आना चाहते हैं तो वो इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि फूल वगैरह अर्पण करने के बाद आपको स्नान आदि करना होता है, कपड़े आदि चेंज करने होते हैं, तो इसका भी ध्यान देंगे। अभी ऐसी विशेष और महान आत्मा के लिए हम योग में बैठ करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
पहले 2 मिनट, आज तो भट्टी वाले जा रहे हैं, तो जो जा रहे